अध्याय एक बौद्ध कालीन आर्थिक जीवन भूमिका। बौद्ध तथा जैन धर्मों का प्रादुर्भाव भारत में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसके बाद ये दोनों धर्म समांतर रूप से मौर्यों के काल के अंत तक बराबर विकसित होते रहे। इस प्रकार बौद्ध काल का आर्थिक जीवन से जैन काल के आर्थिक जीवन पर भी काफी हद तक प्रकाश पड़ जाता है। बौद्ध साहित्य में और इसके साथ साथ तत्कालीन वैदिक धर्म के साहित्य अर्थात उपनिषदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों आदि से बौद्ध कालीन आर्थिक जीवन की जानकारी उपलब्ध होती है। बौद्ध साहित्य में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस समय आर्थिक व्यवस्था का सर्वतोमुखी विकास हो चुका था। इस समय का समाज आर्थिक विकास की दृष्टि से कृषि युग्म समाज था। कृषि के साथ साथ दूसरे व्यवसाय भी विकसित हो चुके थे। किसी और पशुपालन आर्थिक जीवन की आधारशिला। बौद्ध कालीन आर्थिक जीवन के विविध पक्षों का अध्ययन निम्नलिखित आधारों पर द्रष्टव्य है। यद्यपि भारत का आर्थिक जीवन भी मूलतः कृषि प्रधान है, किंतु यह बात बौद्ध कालीन भारत के विषय में भी अधिक लागू होती है। वह समय आर्थिक विकास की दृष्टि से किसी युग था। किसी और पशुपालन का चोली दामन का साथ है। इस समय के किसान व्यवस्थित ढंग से खेती करते थे। किसान जिन गांवों में रहते थे उसके बाहर उनके खेत होते थे। किसान लोग अपने घर के आसपास अपने पशुओं के रखने की व्यवस्था करते थे। किसान अथवा कृषक खेती करने में अन्य लोगों से सहायता लेते थे। इनको कर्मकार कहा जाता था। इस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत अधिक भूमि थी और वे एक प्रकार से आज के भारत के बड़े भूमिदार अथवा सीरदार मजदूरों की सहायता से खेती करते थे। अधिकांश किसान स्वयं तथा एक दो मजदूर की सहायता से खेती करते थे। खेती की बटाई पर देने की प्रथा इस समय भी प्रचलित थी। लगान। बौद्ध साहित्य के विविध उल्लेखों से ऐसा पता लगता है कि किसानों को अपनी उपज का 1/6 भाग भूमिकर अथवा लगान के रूप में सरकारी कोष में जमा करना होता था। पशुपालन। इस समय के किसान लोग पशुपालन भी करते थे। पशुओं में सर्वाधिक महत्व गाय और बैलों का था। गाय दूध देने के काम आती थी और बैल खेती के तथा गाड़ी जोतने के काम आते थे। बौद्ध काल में शिल्प और व्यवसाय। बौद्ध कालीन भारत में खेती के साथ साथ दूसरे शिल्प और व्यवसाय काफी विकसित अवस्था में थे। ये व्यवसाय जीवन के विविध क्षेत्रों से संबंधित थे। जो प्रमुख व्यवसाय इस समय प्रचलित थे वे निम्नलिखित हैं। नंबर एक, योद्धा अथवा युद्ध द्वारा आजीविका अर्जित करने वाले लोग। इसके अंतर्गत धनुष धारण कर युद्ध करने वाले, हाथी सेना के सैनिक, घुड़सवार, रथ वाली सेना के सदस्यों तथा दूसरे अन्य प्रकार के योद्धा आते थे। इस श्रेणी के अंतर्गत 11 कोटियों में सैनिकों अथवा युद्ध व्यवसायियों को विभाजित किया गया है। नंबर दो, विविध प्रकार की सेवा करके आजीविका अर्जित करने वाले व्यवसायी। उस समय युद्ध तो एक व्यवस्था थी, साथ ही कुछ अन्य ऐसे कार्य थे जिनकी गणना सेवा के अंतर की जा सकती है। इन कार्यों को भी उस समय व्यवसाय माना जाता है। इस प्रकार के व्यवसायों की संख्या भी 12 बताई जाती है। बौद्ध ग्रंथों के दीर्घ निकाय के अनुसार ये व्यवसाय थे। नंबर का, दास पुत्र। वे लोग सामान्य दास लोग अन्य लोग की सेवा करते थे और उनके पास दास के रूप में रहते थे। नंबर खा, आलारिक। वे लोग जो भोजन बनाकर अपनी आजीविका चलाते थे उन्हें आलारिक कहा जाता था। इसका अर्थ यह है कि इस समय भोजन बनाना भी एक व्यवसाय था। नंबर गा, कल्पक। कल्पक अथवा नाई, बाल काटने वाला, हज्जाम। घा, नहापक अर्थात नहलाने वाला या स्नान कराने वाला। अंगा, सूद अथवा हलवाई। च, मालाकार, पूजा की माला बनाकर बेचने वाला तथा फूलों की माला बनाकर बेचने वाला तथा फूलों की अन्य वस्तुएं बनाकर मालाकार कहलाता था। छह, रजक अथवा धोबी तथा कपड़े धोने वाला। नंबर जा, रंगरेज। झा, नलकार अथवा टोकरे बनाने वाला या कुंभकार अथवा कुम्हार। का, गणक अथवा हिसाब किताब रखने वाला। था, मुद्रिक अथवा मुद्राओं को गिनाने वाला। व्यवसायों और व्यवसायियों की युक्त सूचना से स्पष्ट रूप से पता लगता है कि इस समय अनेक व्यवसाय विकसित हो गए थे। व्यवसायों की सूची में कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जो बिल्कुल आधुनिक प्रतीत होते हैं। इस सूची से यह भी पता लगता है कि बौद्ध काल में व्यवसाय के क्षेत्रों में विशेषीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ रही थी। नंबर 3, बौद्ध काल के अन्य व्यवसाय। दो सूचियों में जिन व्यवसायों की गणना की गई है वे बौद्ध काल के सभी व्यवसायों का परिचय नहीं देती। इन व्यवसायों के अतिरिक्त इस समय कुछ अन्य व्यवसाय भी प्रचलित थे जो जन सम्मान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इन व्यवसायों की सूची नीचे दी जा रही है। नंबर 1, बढ़ई गिरी अथवा लकड़ी की वस्तुएं बनाने का काम। नंबर 2, भवन निर्माण एवं अन्य प्रकार की कारीगरी। नंबर 3, धातुओं से विविध प्रकार के हथियार, आभूषण तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं तथा मूर्तियां आदि बनाने का काम। नंबर 4, पत्थर का काम अथवा पत्थर काटकर सिलाए बनाने तथा पत्थर की मूर्तियों और बर्तन आदि बनाने का काम। नंबर 5, कपड़े का काम अथवा जुलाहे का काम। इस समय तक वस्त्र निर्माण का व्यवसाय बड़ा विकसित हो गया था और केवल रेशमी या ऊनी वस्त्रों का निर्माण नहीं होता था वरन उच्च कोटि के सुंदर सूती वस्त्रों का निर्माण भी होता था। नंबर 6, चमड़े का काम। इन व्यवसाय के अंतर्गत चमड़े को साफ करके कमाने से लेकर उससे जूते, चप्पल तथा अन्य वस्तुएं बनाने का काम सम्मिलित है। नंबर 7, हाथी दांत का काम। इस व्यवसाय में हाथी के दांत की विविध वस्तुएं बनती थी। इस काम में हाथी दांत के आभूषणों के बनने से लेकर हाथी दांत की मूर्तियां, अन्य वस्तुएं आदि बनाने का काम सम्मिलित है। नंबर 8, जौहरी अथवा रत्नों की परख और उनका व्यापार। नंबर 9, मछली पकड़ना अथवा मछली मारना। नंबर 10, मांस व्यापार। मांस व्यापार पशुओं को मारकर खाने योग्य मांस तैयार करते थे। बौद्ध साहित्य में इस प्रकार की दुकानों का अनेक स्थानों पर उल्लेख है। इससे यह पता लगता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के बावजूद पशु हिंसा और मांस भक्षण पूर्णतः विलुप्त नहीं हुआ था। नंबर 11, चित्रकला। इस समय चित्रकला भी एक व्यवसाय बन गई थी। बौद्ध काल में लोग अनेक प्रकार के चित्र बनाते थे। इन चित्रों को बनाकर वे अपनी आजीविका अर्जित करते थे। नंबर 12, शिकार। बौद्ध युग में लोग शिकार करते थे। ये शिकारी बौद्ध साहित्य के अनुसार दो प्रकार के हैं। एक वे लोग जो जंगलों में रहते थे और जंतुओं का शिकार कर अनेक बहुमूल्य वस्तुएं एकत्र करते थे और उनको बाजार में जाकर बेचते थे। दूसरे वे नगरवासी कुलीन थे जो अपने शौक के लिए अथवा पैसे के रूप में शिकार को अंगीकार किए हुए थे। नंबर 13, मल्लाहगिरी और जहाज रानी। बौद्ध साहित्य के अनेक स्थानों पर नौका तथा जलयान चलाने का उल्लेख है। इससे यह पता लगता है कि नौका तथा जलयान चलाना उस समय एक व्यवसाय के रूप में विकसित हो गया था। उस समय नदियों और समुद्री यातायात का एक साधन और इस कारण इस व्यवसाय का विकसित होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। बौद्ध काल के विविध व्यवसाय और उनके संगठन। बौद्ध काल के साहित्य से यह पता लगता है कि उस समय विविध व्यवसाय के अपने संगठन थे। इन व्यवसायिक संगठनों को शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त थी। बौद्ध साहित्य में इस बात का उल्लेख है कि उस समय के व्यवसायी विविध श्रेणियों में संगठित थे और इन श्रेणियों का अपना आंतरिक संगठन भी था। वास्तव में इस समय तक भारत में व्यापार और व्यवसाय काफी संगठित हो चुका था। विकसित और संगठित व्यापार के लिए यह आवश्यक था कि उनके मरने वालों के कुछ संगठन बन जाए। यह व्यवसायिक संगठन बहुत कुछ वैसा ही था जैसा मध्यकालीन युग में यूरोप के गिल्ड। अंतर केवल इतना था कि भारत के व्यावसायिक संगठनों को जिस प्रकार मान्यता थी संभवतः उस प्रकार की मान्यताएं यूरोप के गिल्डों को उपलब्ध नहीं थी। व्यावसायिक संगठनों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से तीन कारण उत्तरदायित्व थे। नंबर 1, इस समय तक आते आते विविध व्यवसाय वंश परंपरा हो गए थे और लोग उन्हीं व्यवसाय को करते थे जो उनके वंश में होते चले आ रहे थे। नंबर 2, विविध व्यवसायों के लोग व्यवसाय के अनुसार तो स्थानों पर बस गए थे। उदाहरण हाथी के दांत का काम करने वाले एक स्थान पर बस गए थे और नव निर्माण का काम करने वाले लोग दूसरे स्थान पर बस गए थे। एक स्थान पर बसने के कारण उन लोगों का एक संगठन बन जाना स्वाभाविक था। नंबर 3, इन व्यवसायिक संगठनों के मुखिया का समाज में और राज दरबार में विशेष सम्मान होता था। इस कारण विविध व्यवसायी इस कारण विविध व्यवसायी अपने संगठनों का निर्माण कर अपने व्यवसाय के लिए राज दरबार से मान्यता प्राप्त करते थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार के शब्दों में, प्रत्येक व्यवसायिक संगठन का एक निश्चित संविधान तथा एक अध्यक्ष अथवा सभापति और छोटी सी कार्यकारिणी होते थे। कभी कभी इन व्यवसायिक संगठनों को काफी शक्ति और सम्मान उपलब्ध हो जाता था, किंतु प्रत्येक दशा में व्यवसायिक संगठनों के मुखिया को राज दरबार में विशेष सम्मान उपलब्ध था। डॉक्टर मजुमदार के शब्दों में आगे और लिखा है, ये व्यवसायिक संगठन कभी कभी अपनी सेवाएं रखते थे, सेनाएं रखते थे और आवश्यकता के समय सम्राट की सहायता करते थे, किंतु कभी कभी इनके बीच में युद्ध और संघर्ष हो जाता था, जिसके कारण शासन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष प्रयास करना होता था। बैंकों के रूप में व्यवसायिक संगठनों की भूमिका। डॉक्टर मजुमदार ने आगे लिखा है कि ये व्यवसायिक संगठन बौद्ध कालीन बैंकों का कार्य करते थे और इनके पास एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा करते थे। जमाकर्ताओं को ब्याज भी मिलता था। इनसे यही पता लगता है कि इस समय के व्यापारिक संगठन बड़े ही सुदृढ़ हो गए थे। व्यवसायिक संगठनों के अतिरिक्त कुछ दूसरे प्रकार के भी व्यवसायिक संगठन थे, जो वर्तमान ज्वाइंट स्टॉक कंपनी तथा कॉमर्स चैम्बर की तरह कार्य करते थे। भवन निर्माण और नगर नियोजन। बौद्ध काल में भवन निर्माण और नगर नियोजन बहुत अधिक विकसित अवस्था को पहुंच गए। इस समय अनेक छोटे बड़े नगर विद्यमान थे। इनमें से कुछ नगर छोटे थे और कुछ बड़े। अयोध्या, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी, राजगृह, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र आदि इस समय के प्रमुख नगर बताए जाते हैं। बौद्ध साहित्य के अतिरिक्त इस समय के जैन साहित्य में भी अनेक नगरों का उल्लेख है, जिनमें कौशलपुर, कपिल्यपुर, मिथिला, तक्षशिला, काशीनाथ आदि का भी उल्लेख है। बौद्ध गांव। इस समय के नगरों के अतिरिक्त अनेक गांव थे। कुछ गांव छोटे और बड़े, कुछ गांव में केवल एक ही वर्ण या जाति के लोग, जैसे ब्राह्मण ही ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही क्षत्रिय बसा करते थे, और कुछ लोग केवल एक ही प्रकार के शिल्पकार अथवा व्यवसायी वास करते थे। ये विशिष्ट प्रकार के गांव थे, किंतु अधिकांश गांव ऐसे थे जिनमें सभी वर्ग और व्यवसाय के लोग रहते थे। इन गांवों में बीच में तो ग्रामवासी की बस्ती होती थी और अनेक उसके बाहर भूमि होती थी जिसमें वे लोग खेती करते थे। खेती की भूमि के अतिरिक्त इन गांवों की चारागाहें भी थी, जिन पर गांव के सभी लोगों का संयुक्त रूप से अधिकार होता था। चारागाहों के अतिरिक्त गांवों की सीमा पर जंगल भी होते थे, जहां से ग्रामवासी लकड़ी तथा अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त करते थे। बौद्ध कालीन गांव में सामूहिक जीवन काफी मात्रा में था और ये मिलजुल कर अनेक सार्वजनिक हितों के कार्य, जैसे सड़क बनाने, बांध बांधना आदि करते थे। अब व्यक्तिगत कामों को प्रत्येक किसान अथवा ग्रामवासी स्वयं करता था। गांव के चारों ओर मिट्टी की दीवार अथवा कांटे का घेरा संरक्षण के लिए बनाया जाता था। नगरों में भवन निर्माण। बौद्ध काल में नगर नियोजन और भवन निर्माण कला काफी विकसित हो गई थी। इस समय के नगर भी एक किले की भांति बनाए जाते थे और उनके चारों ओर पर कोटा होता था। मकान बनाने के लिए बहुत हद तक उस समय सामग्री का प्रयोग होता था जो आज भी प्रयोग में आता है, जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी आदि। दीवारों पर प्लास्टर करने की विधि का भी विकास हो गया था। वास्तव में इस समय मकान बनाने वाले व्यवसायियों और राज्यों को कला का काफी हद तक विकास हो गया था। इस युग के मकान एक से अधिक मंजिल वाले और कुछ तो कई कई मंजिल वाले होते थे। मकानों की विशालता उसमें रहने वाले की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती थी। इसका अर्थ यह है कि इस समय समाज आर्थिक दृष्टि अथवा आर्थिक संपन्नता की दृष्टि से विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गया था। देश के विविध भागों और दूसरे देशों से व्यापार। बौद्ध काल में व्यापार इतना विकसित हो गया था कि भारत के व्यवसायी केवल देश के विभिन्न भागों से ही व्यापार नहीं करते थे, वरन दूसरे देशों से भी व्यापार करते थे। वाराणसी उस समय का एक प्रसिद्ध व्यवसायिक केंद्र था और वहां से देश के विविध भागों से व्यापार होता था। देश के उत्तरी भाग में दक्षिणी पूर्वी भाग एवं पूर्वी पश्चिमी भागों से देश के अन्य भागों का व्यापारिक संबंध था। इसके अतिरिक्त गांधार, सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया आदि के देशों से इस समय भारत के व्यापारिक संबंध थे। व्यापार के लिए स्थल तथा जल भागों का प्रयोग। इस समय भारत व्यवसायी अपनी सामग्री को व्यवसाय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए स्थल तथा जल मार्ग दोनों का ही प्रयोग करते थे। स्थल मार्ग से व्यवसायी बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करते थे, ये हजारों मील की होती थी। इसका अर्थ यह है कि इस समय भारत में व्यवसाय की सुविधा के लिए अनेक प्रसिद्ध मार्ग उपलब्ध थे। स्थल मार्गों से व्यापारियों के समूह एक साथ जाते थे और अपने व्यापारिक कार्यों के संपादन के लिए अनेक प्रकार के कष्ट झेलने में संकोच नहीं करते थे। नदियों का प्रयोग। स्थल मार्ग के अतिरिक्त आंतरिक व्यापार के लिए इस समय नदियों का भी प्रयोग होता था। इसका अर्थ यह है कि इस समय गांव और अन्य जलपातों के द्वारा देश का आंतरिक व्यापार चलता था। इससे यह भी बात सिद्ध होती है कि इस समय जल मार्ग की सुविधा काफी विकसित और व्यवस्थित। वास्तव में बौद्ध काल में नौका एवं जलपोत संचालन की कला काफी विकसित हो गई थी। जातकों एवं जैन ग्रंथों के वर्णन से इस समय इस विषय में काफी जानकारी उपलब्ध होती है। समुद्र मार्ग। नदियों के अतिरिक्त व्यापारी समुद्र मार्ग का भी उपयोग अपने व्यापार और व्यवसाय के लिए करते थे। यद्यपि यह समुद्र यात्रा बहुत संकट में होती थी, किंतु व्यवसायी समुद्री यात्रा करते अवश्य थे। समुद्री यात्रा में उन्हें दिग्दर्शक यंत्र, कुतुबनुमा आदि यंत्रों का प्रयोग करना होता था। इन यंत्रों के अभाव में ये समुद्री यात्री कभी कभी रास्ते से भटक भी जाते थे। जातक कथाओं अथवा जैन धर्म के साहित्य में इन यात्रियों के इस प्रकार से भटकने की घटनाओं का अनेक स्थलों पर उल्लेख है। डाकुओं की लूटपाट। इस समय के व्यवसायियों को डाकुओं के द्वारा लूट भी लिया जाता था। डाकुओं की कभी कभी बस्तियां भी बन जाती थी। इन डाकुओं से बचने के लिए व्यवसायी यात्रा पर जाते समय अपने साथ सशस्त्र योद्धाओं को लेकर चलते थे। बौद्ध कालीन जातक कथाओं में और जैन धर्म के साहित्य में इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख है। इस सबसे बौद्ध और जैव युग की आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक उन्नति का सहज रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। माप एवं तौल पद्धति एवं वस्तुओं के मूल्य। इस समय मुद्रा पद्धति काफी विकसित हो गई थी। बौद्ध युग का सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिक्का कहापन अथवा करसापण बताया जाता है। इसके अतिरिक्त निष्क, सुवर्ण, धरड़ नामक सिक्कों का भी प्रयोग इस समय प्रचलित था। ये सब सिक्के धातुओं के अर्थात तांबा, चांदी और सोना के होते थे। इन सिक्कों का प्रचलन शासन द्वारा होता था। इस बात का भी उल्लेख है, कभी कभी विविध व्यवसायिक संगठनों और संपन्न व्यक्तियों द्वारा इनका प्रचलन हो जाता था। करसापण सामान्यतः 1 रुपये के बराबर सिक्का था और इसकी 98, 54, 91 भी की भांति विविध भाग थे। मुद्राओं और सिक्कों के अतिरिक्त इस समय तक नाप और तोल के मानक आधार भी निर्धारित हो चुके थे। इन्हीं के आधार पर विविध वस्तुओं के तौल और नाप होती थी। वस्तुओं के मूल्य। इस समय विविध प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध थी और वस्तुओं की विशेषताएं, गुण और उपयोगिता के आधार पर उनके मूल्य भी निर्धारित होते थे। मूल्यों का निर्धारण राज्य द्वारा नहीं वरन सामान्य मांग और पूर्ति के सिद्धांत के आधार पर होता था। उदाहरण अर्थ, उस समय गधे की कीमत केवल करसापण थी और घोड़े की कीमत 1000 करसापण से लेकर 6000 करसापण तक थी। इस समय बैलों की जोड़ी तो 24 करसापण में मिल जाती थी, किंतु मेमने अथवा भेड़े के बच्चे का मूल्य 100 करसापण होता था। ये सब बातें इस समय की आर्थिक स्थिति की द्योतक हैं। बौद्ध गांव। इस समय के नगरों के अतिरिक्त वेतन। इस समय विविध प्रकार के कार्य करने वाले लोगों को विविध प्रकार का वेतन उपलब्ध होता था। राज्य कर्मचारियों को कम से कम 1 करसापण प्रतिदिन मिलता था और गणिका को 5 से लेकर 100 करसापण शुल्क के रूप में उपलब्ध होता। एक कुशल धनुर्धारी को 1000 करसापण तक मिलता था। रथ का किराया सामान्यतः 8 करसापण प्रति घंटा था। आचार्यों को उनके संरक्षण अथवा अध्ययन करने के रूप में देना होता था। जो स्थिति बौद्ध काल की थी, बहुत कुछ वैसी ही आर्थिक स्थिति जैन काल की थी। वास्तव में जैन और बौद्ध काल के आर्थिक जीवन में कोई विशेष अंदर अंतर नहीं था, किंतु इतना निर्विवाद है कि इस समय भारत का आर्थिक जीवन काफी विकसित और समृद्ध था।